आप जो सुनने जा रहे हैं वह हेडी बर्नार्ड जाकोस्की के हत्यारे पर मुकदमा चलाने के लिए चलाए गए आपराधिक मुकदमे का एक अंश है।
अब स्टीव, आपने अपनी गवाही सुनी कि आपने इंटरनेट के माध्यम से हेडी की हत्या की व्यवस्था की थी, क्या आपने ऐसा किया था?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हेडी की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं था।
आप गवाही क्यों दे रहे हैं?
मैं गवाही दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार और दोस्तों और हेडी के परिवार और दोस्तों को सच्चाई पता चले। जिस व्यक्ति की आपने अभी गवाही सुनी है उसका नाम स्टीवन कुक है। जुलाई 1998 में हेडी बर्नार्डोव्स्की की मुलाकात स्टीवन से एक स्थानीय पूल क्लब में हुई थी। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि हेडी उसी रात उसके साथ घर चली गई। अपने माता पिता के साथ जीवन भर सख्त घर में रहने के बाद स्टीव वास्तव में उसके लिए रातों रात कवच बन गया और मिलने के कुछ ही दिनों बाद दोनों साथ रहने लगे। चलिए अब 20 अप्रैल 2000 की बात करते हैं। पिछले 2 सालों से अपने रिश्ते की नींव रखने के बाद ये जोड़ा चीजों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार था। उन्होंने अपने लिए जीवन बीमा पॉलिसी भी ले ली थी और लास वेगास में गर्मियों में शादी की योजना पर चर्चा कर रहे थे। स्टीव ने अभी अभी लोव्स में अपनी पार्ट टाइम शिफ्ट खत्म की थी और हेडी को रिसेप्शनिस्ट के तौर पर उसकी नौकरी से लेने आया था। फिर उसने शाम को करीब 6:45 बजे उसे घर छोड़ा। वो कुछ कामों से वापस बाहर चला गया और फिर करीब 8 बजे घर पहुंचा। कुछ देर बाद बाल्टीमो काउंटी पुलिस विभाग को ये फोन कॉल आया।
बाल्टीमो काउंटी 911,
मेरी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी गई है।
क्या आपने अभी अभी उसे ढूंढा?
अभी?
क्या आपने उसे अभी अभी ऐसे ही पाया सर?
हाँ।
क्या हुआ, क्या उसे गोली मारी गई?
नहीं, उसे काटा गया है। आपको नहीं पता कि वो कब से ऐसे ही है? नहीं, बस किसी को भेजो।
आपका आखिरी नाम क्या है सर?
हे भगवान, मेरा रसोईया रसोईया, क्या आप किसी को भेज रहे हैं?
हाँ, मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, मैं बस मेरे साथ रहूँगा। ठीक है।
हे भगवान, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मुझे उसे लेने जाना है। क्या
उसके पास कोई हथियार है?
नहीं। क्या आप किसी को भेज रहे हैं? हाँ, वे आ रहे हैं सर। ठीक है, रुकिए, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ रहें। नहीं नहीं, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मुझे उसके साथ जाना होगा।
जब पुलिस घर पहुंची तो उन्हें एक भयानक अपराध स्थल मिला। हेडी का गला घोटा गया था और उसका गला काटा गया था। उसे इतना खून बह चुका था कि खून फर्श से होकर तहखाने में रिस गया था। स्टीव उसे अपनी बाहों में लिए हुए था और बेकाबू होकर रो रहा था। पुलिस ने घटनास्थल को सील कर दिया और बाकी अपार्टमेंट की जांच शुरू कर दी। उनके द्वारा देखे गए पहले सबूतों में हेडी का पस उसके बगल में फर्श पर पड़ा हुआ था और दीवार पर उसकी लिपस्टिक से बना एक नंबर 1 था। अन्य कमरों की अव्यवस्थित स्थिति को देखते हुए जांचकर्ताओं ने इस संभावना पर भी विचार किया कि यह एक असफल डकैती थी। हालांकि गहनों के डिब्बे और दराज एक जार थे, लेकिन घर से कोई भी कीमती चीज गायब नहीं थी। हेडी के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल परीक्षक के कार्यालय में ले जाया गया, जहां उसके नाखून काटे गए और डीएनए का परीक्षण किया गया। ऐसे मामलों में जहां पीड़ित की मौत से पहले संघर्ष हुआ हो, नाखूनों के टुकड़े जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। पीड़ित ने शव को खरोंचा हो सकता है या ऐसा कुछ किया हो सकता है जिससे उसके नाखूनों के नीचे कोई विदेशी पदार्थ जमा हो गया हो, जबकि हेडी के नाखूनों के नीचे वास्तव में एक पुरुष डीएनए की थोड़ी मात्रा थी। उसका अपना डीएनए भी पाया गया था और वे किसी संदिग्ध की सही पहचान करने के लिए 2 डीएनए प्रोफाइल को अलग नहीं कर पाए थे। इस बीच स्टीव को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उन्होंने ये तस्वीरें खींची। उसने दावा किया कि उसके कब्जों पर खून पुलिस को कॉल करने से पहले सीपीआर करने और हेडी को पकड़ने के बाद था। पूछताछ के दौरान स्टीव ने हेडी के शव की खोज से पहले की अपनी दोपहर का विस्तृत विवरण दिया। जैसा कि हमने पहले कम विस्तार से बताया था, शाम 6:45 बजे स्टीव ने काम के बाद हेडी को घर छोड़ा क्योंकि उसे बाथरूम जाना था। उसके बाद वह अपने कुछ काम निपटाने के लिए चला गया। बाहर जाते समय उसने अपने बाल कटवाए और तेल बदलवाया। वह अपनी बहन की प्लम्बिंग को ठीक करने के लिए होम डिपो से सामान लेने भी गया। फिर वह रात 8 बजे घर लौटा और हेडी की लाश मिली। ये टाइमलाइन सही थी क्योंकि स्टीव के पास इसे साबित करने के लिए सभी रसीदें थीं। उसके पास उसके रास्ते के कई फुटेज भी थे जिनमें उसे कई बार देखा गया था। हालांकि स्टीव ने हेडी की हत्या से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी। कुछ संदिग्ध घटनाएं थीं। पहली घटना कुछ हफ्ते पहले की है। हेडी के घर कोई आया था। जाहिर तौर पर पड़ोस में निगरानी कार्यक्रम शुरू करने में दिलचस्पी रखता था। हालांकि हेडी पड़ोस के उस आदमी को नहीं पहचानती थी। वो इस बातचीत से थोड़ी परेशान थी, तो उसने ऑफिस में अपने सहकर्मियों को इस बारे में बताया और उस आदमी को एक बड़ा गोरा या काला आदमी बताया जिसके बाल काले थे और उसके बाएं हाथ पर एक टैटू था। उसने एक कागज पर टैटू भी बनाया था। दूसरी घटना उसकी हत्या से कुछ दिन पहले की है। बेसमेंट के दरवाजे के ताले के आसपास खरोंच थी, जैसे कोई अंदर घुसने के लिए उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा हो। स्टीव ने तुरंत कदम उठाया और रेंटल एजेंसी के पास जाकर ताले बदलने को कहा। एक और बात थी जिसने जांचकर्ता का ध्यान खींचा। स्टीव से पूछताछ के दौरान उन्हें उसकी और हेडी की हाल ही में फाइल की गई जीवन बीमा पॉलिसी के बारे में पता चला। जिस बात ने उनकी दिलचस्पी जगाई वह थी रकम। स्टीव पर 900,000 और हेडी पर 700,000। स्टीव को नहीं लगा कि जांच के लिए यह महत्वपूर्ण है, लेकिन जांचकर्ताओं को कुछ और लगा। हालांकि ये गिरफ्तारी के लिए काफी नहीं था, इसलिए उन्होंने स्टीव को जाने दिया और जांच जारी रखने तक उसे अपने रडार पर रखा। अगले कुछ हफ्तों में पुलिस ने करीब 100 लोगों से पूछताछ की ताकि उस रहस्यमय संदिग्ध का पता लगाया जा सके जिससे हेडी ने अपने घर के दरवाजे पर बात की थी। हालांकि एक संभावित संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में आरोप हटा दिए गए। इस बिंदु पर जांचकर्ता हफ्तों या महीनों के लिए नहीं बल्कि 11 साल के लिए रुक गए। ऐसा इसलिए क्योंकि हेडी की हत्या में किसी विशेष व्यक्ति को जोड़ने के लिए कोई फोरेंसिक सबूत नहीं था। 2004 में हेडी के माता पिता ने 700,000 के जीवन बीमा भुगतान के लिए स्लेयर नियम के तहत स्टीव पर मुकदमा दायर किया। स्लेयर नियम किसी भी व्यक्ति को जीवन बीमा लाभ लेने से रोकता है जो जानबूझकर बीमा धारक की मृत्यु का कारण बनता है। दीवानी मुकदमे को अदालत के बाहर सुलझा लिया गया जब कुक ने गवाही देने से लगभग 10 मिनट पहले वादी को 575,000 का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। हत्या के मामले पर काम कर रहे जासूसों ने समझौते को अपराध स्वीकार करने के रूप में माना। इसके बावजूद स्टीव ने सालों तक एक नई महिला से शादी की और सरकार के लिए वेटरन अफेयर्स में काम करते हुए अपना परिवार शुरू किया। 11 सालों तक ये केस ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। डीएनए तकनीक में हुई तरक्की की वजह से जासूसों को कई ठंडे बस्ते में पड़े केस फिर से खोलने में मदद मिली। इनमें से एक केस हेडी का था जिसकी वजह उसके नाखून थे। अपने डेटाबेस में पुरुष डीएनए को खंगालने के बाद जासूसों को एक सफलता मिली। वो कोलोराडो का रहने वाला था जो बाल्टीमो से 1500 मील दूर है। अपराध स्थल से उसकी दूरी की वजह से जासूसों को शक हुआ कि यह उनका आदमी है या नहीं, लेकिन उन्होंने कोलोराडो के अधिकारियों को फोन किया और क्लर्क ने अलेक्जेंडर बेनेट के बारे में जो बताया वह हेडी के बताए हुए संदिग्ध आदमी से मेल खाता था। या तो वह गोरे रंग का अश्वेत आदमी था या काले बालों वाला और उसके बाएं हाथ पर टैटू था। हालांकि ये सच था कि यह उनका आदमी था, इसके लिए उन्हें किसी तरह से कोलोराडो के अलेक्जेंडर बेनेट को हेडी की हत्या के समय बाल्टीमो में 11 साल पहले मौजूद होना था। जासूसों ने मैरीलैंड के एक आंतरिक डेटाबेस को खंगालने का फैसला किया जिसमें पिछले ट्रैफिक स्टॉप के बारे में जानकारी थी और अलेक्जेंडर बेनेट का नाम टाइप करके एक और हिट का पता चला। जाहिर तौर पर एलेक्स को बाल्टीमो में हाईवे के किनारे चलते हुए पाया गया था, लेकिन इस स्टॉप के दौरान दर्ज की गई एकमात्र जानकारी उसकी जन्मतिथि थी। हालांकि यह जासूसों को हेडी की मौत के समय एलेक्स के ठिकाने के बारे में आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त था, लेकिन राज्य के वकीलों के लिए ये जानकारी पर्याप्त नहीं थी, इसलिए उनका अगला बड़ा विकल्प सीधे स्रोत तक जाना था। जासूसों ने अपना सामान पैक किया और अलेक्जेंडर से मिलने कोलोराडो की यात्रा की। एलेक्स के अनुसार उसकी कुछ दोस्तों के साथ एक संगीत कार्यक्रम में जाने की योजना थी, लेकिन किसी समय उसे छोड़ दिया गया और अगले एक महीने या उससे अधिक समय तक वह बाल्टीमो की सड़कों पर रहा। उसे उस समय की कोई अन्य जानकारी याद नहीं थी। मैं आपको बताता हूँ कि यह अजीब है, इसलिए यह अजीब है, यह
बहुत अजीब है।
मुझे याद नहीं कि तुम किसके साथ रहे या किसके साथ मिले।
एलेक्स की याददाश्त कमजोर होने के कारण चीजों को अस्पष्ट रखना जासूसों के लिए कारगर नहीं था, इसलिए वे आखिरकार असली काम पर लग गए।
इस लड़की के नाखून उसकी मौत के समय लिए गए थे और उसके नाखूनों के नीचे तुम्हारा डीएनए है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। एलेक्स ने आत्मविश्वास से इसका खंडन करते हुए कहा कि वो बता सकता है कि हेडी के नाखूनों के नीचे उसका डीएनए क्यों पाया गया। उसे बाल्टीमो में अपने समय के दौरान हुई एक घटना याद आए। एक दिन बस स्टॉप पर बस का इंतजार करते समय एक महिला अचानक उसके पास आई और उस पर हमला करने लगी, उसके चेहरे पर पंजे मारने लगी।
मैं थोड़ा डर गया क्योंकि मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और मुझे लगता है कि मैंने उसे सुना। मुझे यकीन नहीं है। फिर जासूस कई अलग अलग महिलाओं की तस्वीरें निकालता है जिसमें हेडी की तस्वीर भी शामिल है और एलेक्स को बस स्टॉप की पूरी कहानी याद है। जासूसों को उम्मीद है कि वह उन सभी में से हेडी की तस्वीर को पहचान लेगा और वह बिल्कुल वैसा ही करता है।
और वो भी कुछ कुछ उसकी तरह ही दिखती है। क्या आपके बाएं हाथ पर कोई टैटू है? हाँ। क्या मैं देख सकता हूँ कि जब ये सब हुआ था उस समय आप बाल्टीमो में थे और आपका डीएनए वहाँ है और यह टैटू आपकी बांह पर ठीक उसी जगह पर है जहाँ पीड़िता ने बताया था
और आपने ही बनवाया था। मेरा मतलब है कि ये सब बहुत सारे संयोग हैं।
यह एक गहरी बात है। तो आप जानते हैं कि यही वजह है कि मैं चिंतित हूँ। ठीक है, होना भी चाहिए। मैं चिंतित हूँ। क्या मुझ पर अभी कोई आरोप लगाया जा रहा है?
ठीक है, अभी आप पर कोई आरोप नहीं लगा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, चीजें ठीक नहीं चल रही हैं।
मैंने आपको सारी व्याख्याएं दे दी हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, और जैसा कि मैंने कहा, अगर हम यहाँ से निपट चुके हैं तो मेरा मतलब है मुझे आज बहुत कुछ करना है। दुर्भाग्य से जासूस एलेक्स से कोई बयान नहीं ले पाए, लेकिन उसने जासूसों को एक गवाह ग्रांट लुईस नाम के व्यक्ति से बात करने का सुझाव दिया। ग्रांट लुईस एलेक्स का पुराना दोस्त था और 9 साल पहले 2003 में वे दोनों एक और अपराध में साथ थे। उन्होंने एलेक्स के रूममेट को गिरफ्तार करवाकर उसकी कार चुराने की योजना बनाई थी। योजना कोलोराडो कोर्ट हाउस में धमकी देने की थी। उन्होंने असली विस्फोटक भी बनाए और फिर ऐसा दिखाने की कोशिश की कि एलेक्स का रूममेट कोर्ट हाउस के अंदर उन विस्फोटकों पर काम कर रहा था। फिर उन्होंने इस डिवाइस को बनाने के तरीके से जुड़े दस्तावेज उसके कंप्यूटर पर अपलोड किए ताकि उसकी गिरफ्तारी पक्की हो सके। जब वो जेल में था तभी उन्होंने उसकी कार चुराने की योजना बनाई। रूममेट को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जासूस ने आखिरकार उसे 911 कॉल सुनाई और उसने तुरंत ग्रांट की आवाज़ पहचान ली। जब कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने एलेक्स और ग्रांट से पूछताछ की तो उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया और उन्हें अपनी सजा पूरी करने के लिए जेल भेज दिया गया। खैर, जासूस ग्रांट को पूछताछ के लिए कमरे में ले जाने में कामयाब रहे। मैं थोड़ा हिल गया था। दुर्भाग्य से एलेक्स और बाल्टीमो में बिताए समय के बारे में पूछताछ करने पर ग्रांट ने उकसाने का काम किया, और चूंकि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था इसलिए वो बिना किसी और पूछताछ के बाहर निकल गया। जासूसों की किस्मत अच्छी थी कि वे ग्रांट को हिरासत में ले पाए और कुछ छोटे अपराधों के आरोपों के कारण उसे और पूछताछ के लिए वापस ले आए।
मुझे लगता है कि आप मुझे कुछ बातें नहीं बताना चाहते क्योंकि आप अपने किसी दोस्त को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, और मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी कोई भी बात उसे दुख नहीं पहुंचाएगी क्योंकि जो हो गया वह हो गया।
आखिरकार ग्रांट पर दबाव पड़ा और उसने एक रात नदी के किनारे एलेक्स के साथ नशे में हुई बातचीत का खुलासा किया। उसने कहा, मैंने रात में चूहे की आवाज सुनी। नहीं, फिर उसने कहा, मुझे लगता है कि कोई मर गया है, मुझे लगता है कि मैंने ऐसा ही कहा था, उन्हें लगता है कि कोई मर गया है। और फिर उसने कहा, मुझे किसी के बारे में पता है। ये स्वीकारोक्ति एलेक्स पर आरोप लगाने और उसे गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक मोड़ थी। एलेक्स को मैरीलैंड प्रत्यर्पित किए जाने में ज्यादा समय नहीं लगा जहां उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। 2 साल बाद आखिरकार मुकदमा शुरू हुआ और अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह ग्रांट लुईस थे। एक जासूस ने गवाही से पहले उसे होटल से नाश्ता करने के लिए भी बुलाया। हालांकि उसी समय एलेक्स के वकील ने जासूसों से संपर्क किया और उन्हें बताया कि एलेक्स अपनी माँ से फोन पर बात करने के बाद बात करने के लिए तैयार है। माँ ने एलेक्स से कहा था कि अगर उसने यह अपराध किया है तो अब उसे अपने पापों को कबूल करना चाहिए और यीशु उसे उसके पापों के लिए माफ कर देंगे। जासूस ग्रांट को वापस होटल ले गए और फिर एलेक्स से दोबारा बात करने के लिए कोर्ट गए। ठीक है एलेक्स, तुम ठीक हो? हाँ। बाल्टीमो की योजना अचानक तब सामने आई जब ग्रांट किसी को मारने के लिए पैसे लेने की बात कर रहा था। एलेक्स के अनुसार अभियोजन पक्ष के मुख्य गवाह ग्रांट लुईस, जिसके साथ जासूस उस सुबह बैगल शेयर कर रहे थे, को एक अनजान आदमी ने हेदी को मारने के लिए सुपारी दी थी। फिर उसने एलेक्स को पेशी के तौर पर अपने साथ जोड़ा। क्लाइंट और उस व्यक्ति से मुझे पता चला, ग्रांट ने, और ग्रांट ने मुझसे कहा कि इसे एक हादसा दिखाना चाहिए। जब एलेक्स बाल्टीमो पहुंचा तो ग्रांट से आगे की जानकारी लेने से पहले उसके पास कुछ समय था, इसलिए उसने अपने शिकार को तलाशने का फैसला किया। उसने कबूल किया कि वो पड़ोस की निगरानी करने वाला संदिग्ध व्यक्ति था जिसने हेडी की मौत से कुछ हफ्ते पहले उससे बात की थी और उससे एक रात पहले घर में घुसने की कोशिश की थी। मुझे याद है कि उसने दरवाजा खोला था। क्या तुम एक से ज्यादा बार दरवाजे पर जाकर उससे बात की थी? बस एक बार, बस एक बार।
बाल्टीमो की सड़कों पर लगभग एक महीने तक घूमने के बाद ग्रांट ने एलेक्स को हरी झंडी दे दी। वह हेडी के घर में घुस गया और सामने के दरवाजे के पीछे छिप गया।
ग्रांट से फोन कट गया क्योंकि मैसेज था, ये जल्द ही होने वाला है। मैं वहां दौड़ा। मैंने कार की आवाज सुनी, लाल रंग की कार आकर दरवाजा खोल रही थी। उसने दरवाजा खोला, मुझे देखा और घबरा गई। मैं घबरा गया और सामने से उसकी तरफ दौड़ा और उसकी चीख दबाने की कोशिश की। वो मुझे पुकार रही थी। उसने मेरे होंठ पर पंजा मारा, मेरे होंठ को खरोंचा। उस समय मैंने अपना हाथ उसके मुंह पर रखा और उसके गले को पकड़ रखा था, उसके गले को दबा रहा था, उसे मारने की कोशिश कर रहा था। और मुझे बस इतना याद है कि आखिरकार वो बेहोश हो गया और होश खो बैठा। फिर मैंने उसे घुमाया और उसे मेरे पास लेटा दिया। उसकी पीठ मेरी पीठ पर थी और मैं अभी भी, आप जानते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए उसका गला घोंट रहा था कि वह मर गई है। इसलिए मुझे यकीन नहीं था कि वो मर गई है। लेकिन मुझे पता था कि वो सांस नहीं ले रही थी, और मैं बस ये सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करता रहा। और मैं अभी भी, आप जानते हैं, उसका गला घोट रहा था ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो मर गई है। उसके बाद वो लंगड़ा हो गई थी, तभी मैंने चाकू निकाला और ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैंने उसे काटा है। अब मेरी योजना बस यही थी कि उसे ऐसा दिखाने की कोशिश करूं कि यह एक हादसा है, जैसे कि उसकी गर्दन टूट जाए या कुछ ऐसा हो जिससे लगे कि वो सीढ़ियों से गिर गई या कुछ और फिर उसने दरवाजे के नॉब पोंछने शुरू कर दिए और ड्रेसर के दराज के दरवाजे खींचे एक जार। फिर उसने जासूस को बताया कि दीवार पर लिखा नंबर एक भी जासूसों को गुमराह करने की उसकी कोशिश का हिस्सा था। ग्रांट द्वारा आयोजित एक हिट के हिस्से के रूप में हेदी की हत्या करने की बात स्वीकार करने के बाद जासूस ग्रांट का पक्ष सुनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे होटल से उठाया और आगे की पूछताछ के लिए ले आए। उन्होंने उसे यह अच्छी खबर सुनाते हुए शुरुआत की कि एलेक्स ने अभी अभी कबूल किया है। ग्रांट, तुम इस मामले के बीच में हो। मैं इसके बीच में नहीं हूँ। ठीक है, तुमने उसे बाल्टिमो भेजा था। मैंने उसे बाल्टिमो नहीं भेजा, लेकिन मुझे इस बारे में जितना मैंने कहा था उससे कहीं ज्यादा पता है। मैं तुम्हारे साथ हर संभव तरीके से काम करूंगा। लेकिन अगर मेरा उससे कोई लेना देना नहीं था तो उसने हत्या के लिए क्या किया, मेरी क्या स्थिति थी, ये सब
नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ। एलेक्स के बयान से और भी कई जानकारियां सामने आने के बाद ग्रांट आखिरकार बात करने के लिए तैयार हो जाता है।
मैंने बहुत से लोगों को खोया है और यह एक तरह का अलग विषय है, लेकिन कुछ ऐसी बात है जिससे मुझे लगा, अरे शुरू में तो ये लोग हैं और वे लोगों को मारने के लिए लोगों को काम पर रख रहे हैं। ग्रांट ने आगे बताया कि उसका इरादा कभी किसी को मारने का नहीं था और यह सब एक नाइट क्लब खोलने के लिए पैसे जुटाने की एक विस्तृत योजना का हिस्सा था। ग्रांट ने पेशेवर और गोपनीय घर की सफाई सेवाओं के लिए ऑनलाइन एक विज्ञापन डाला, तो कोई आपसे संपर्क करता है, वो क्या कहता है, कुछ ऐसा कि वो शायद किसी हिट की तलाश में था या कुछ और।
और नतीजतन आपके पास वापस आने वाले लोगों में से एक यहाँ का एक लड़का होता है।
और वो कहते हैं, हाँ मुझे याद है कि उन्होंने एक ईमेल भेजा था जिसमें उन्होंने कहा था, ठीक है मैं 5,000 रुपये पहले ही दे सकता हूँ और फिर उसके बाद या कुछ और, आप जानते हैं, एक हिट या उससे कम के लिए, ठीक है। और फिर हाँ, और मूल रूप से हम यही खोज रहे थे कि डाउन पेमेंट का पहला सेट क्या है और फिर हम उसके बाद आगे बढ़ने के लिए तैयार है। जाहिर तौर पर ग्रांट का इरादा हिट के लिए लोगों से उनकी डाउन पेमेंट लेकर उन्हें अधिकारियों के पास भेजना था और इस प्रक्रिया में उनके पैसे लेकर भाग जाना था। उसे मैरीलैंड जाकर उस आदमी से बात करनी थी और उसके लिए कुछ फंड इकट्ठा करना था जिसे वो आदमी एक कॉन्ट्रैक्ट मर्डर के रूप में देख रहा था, लेकिन ये किसी भी तरह से संतोषजनक या कुछ भी नहीं था। आप जानते हैं, आप उनके पैसे लेते हैं और फिर उन्हें सौंप देते हैं। जासूसों का मानना था कि ग्रांट इस बारे में झूठ बोल रहा था और वह केवल उस अपराध के परिणामों से बचने की कोशिश कर रहा था जो किया गया था। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हेदी को मारने के लिए ग्रांट को किसने काम पर रखा था। एलेक्स से बात करते समय जासूसों के मन में यही सवाल था, क्या आप उस आदमी से कभी मिले थे? जब मैंने ग्रांट को फोन किया था तो उसने मुझे बताया था कि क्लाइंट मुझसे मिलना चाहता है उसके घर पर प्लान के बारे में बात करने के लिए। मैं उस व्यक्ति से मिला था। जासूस कई अलग अलग लोगों की तस्वीरें लेकर आया और एलेक्स से पूछा कि क्या वो उस व्यक्ति को बता सकता है जिससे वह मिला था। एलेक्स तुरंत 4 तस्वीरों को हटा देता है और आखिरी 2 को करीब से देखता है। एलेक्स ने जिस व्यक्ति को अपराधी बताया वो कोई और नहीं बल्कि हेदी का बॉयफ्रेंड स्टीवन कुक था। ऐसा कहा जाता है कि स्टीव ने ग्रांट और एलेक्स को हेदी की हत्या करने पर $60,000 देने की पेशकश की थी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी उस पैसे में से एक पैसा भी नहीं लिया। पूछताछ के बाद स्टीव को फर्स्ट डिग्री मर्डर के लिए और ग्रांट को कॉन्ट्रैक्ट मर्डर की साजिश के लिए गिरफ्तार किया गया। क्या
आप जानते हैं, हमेशा अपनी पहली प्रवृत्ति पर भरोसा करें। खैर, बाल्टीमोर काउंटी पुलिस का कहना है कि उनके जासूसों ने 14 साल तक अपने अंतर्ज्ञान का पालन किया और आखिरकार एक पुराने मामले को सुलझा लिया। एक हत्या जिसे उन्होंने आज खुलासा किया कि वास्तव में हत्या भाड़े पर की गई थी। 11 न्यूज रिपोर्टर काई रीड हमारे लिए सभी कड़ियों को एक साथ जोड़ने के लिए न्यूज रूम में लाइव हैं। काई, खैर, केट, जांचकर्ताओं का कहना है कि पीड़िता के बॉयफ्रेंड स्टीवन के बारे में उनका पहला अनुमान कुक जूनियर सही निकला, और उनका कहना है कि कुक ने कथित तौर पर हत्या के लिए जिन लोगों को काम पर रखा था उनमें से एक ने केस सुलझाने में उनकी मदद की। यह अप्रैल 2000 की बात है। 24 साल की हेडी बनाडोजा उसकी डिंडॉक टाउनहाउस में मृत पाई गई थी, जिसमें वो अपने बॉयफ्रेंड स्टीवन कुक जूनियर के साथ रहती थी। जांचकर्ताओं का कहना है कि उसकी गला घोटकर हत्या की गई थी। पुलिस का हमेशा से मानना था कि हत्या के पीछे कुक का हाथ था, लेकिन वे कभी यह साबित नहीं कर पाए और केस ठंडा पड़ गया। आखिरकार पुलिस ने हत्या के लिए एक शख्स को आरोपी बनाया जिसका नाम अलेक्जेंडर बेनेट था। जनवरी 2012 में उस पर आरोप लगाया गया जब पुलिस ने कहा कि उसे डीएनए सबूत मिले हैं जो अपराध से उसका संबंध बताते हैं। अब इस हफ्ते जांचकर्ताओं का कहना है कि बेनेट ने हत्या के 14 साल बाद स्टीवन कुक जूनियर से बात करना शुरू कर दिया और उस पर उंगली उठाई। कुक को इस हफ्ते पासाडेना में उसके घर से गिरफ्तार किया गया। जांचकर्ताओं का कहना है कि जब उसने हत्या की योजना बनानी शुरू की तो उसने ऑनलाइन जाकर कोलोराडो के दो लोगों को काम पर रखा, 35 साल का ग्रांट लुइस जो बिचौलिए की भूमिका में था, और बेनेट जिसके बारे में पुलिस का कहना है कि वो बनाडोस्की को मारने के लिए डिंडॉक गया था। जासूसों का मानना है कि कुक के लिए ये सब पैसे के लिए था। उनका कहना है कि उसने बनाडोस्की की हत्या से ठीक पहले ली गई $700,000 की बीमा पॉलिसी को भुनाने की योजना बनाई थी। पासाडेना के पड़ोसियों ने, जो पहचान नहीं बताना चाहते थे, कहा कि कुक एक साधारण व्यक्ति की तरह लग रहा था जो अक्सर पड़ोस में तेज आवाज और व्यवधान की शिकायत करने के लिए पुलिस को फोन करता था। जब उन पर आरोप लगे तो अलेक्जेंडर बेनेट ने एक याचिका सौदा किया जिसके तहत उसे ग्रांट और स्टीवन के खिलाफ गवाही देनी पड़ी। मुकदमे की प्रतीक्षा में सलाखों के पीछे स्टीव की मुलाकात एक सेलमेट से हुई, उससे बातचीत शुरू हुई और आखिरकार उसकी एक समस्या को सुझाने की कोशिश की जो उसे एकमात्र तरीका पता था। एक हत्यारे को काम पर रखकर उसने अपने सेलमेट को ग्रांट को मारने के लिए मनाने की कोशिश की जो उसी सुविधा में था। सेलमेट ने मौका मिलते ही अधिकारियों को बताने में संकोच नहीं किया और स्टीव के साथ एक और बातचीत के दौरान वाया पहनने के लिए सहमत हो गया।
मैंने उसे अंदर नहीं बुलाया, मिल गया। अरे स्टीव, स्टीव रुको, ठीक है, हमें एक समस्या है, यहाँ दो है। क्या हुआ? ओम ठीक है।
ये ऑपरेशन काम कर गया और स्टीव पर गवाहों को धमकाने और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया गया। उन आरोपों को एक तरफ रखते हुए हेडी की हत्या के लिए स्टीव का मुकदमा शुरू हुआ। मुकदमे के दौरान स्टीव के बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि उसके खिलाफ पूरा मामला परिस्थितिजन्य था और इस बात का कोई सबूत नहीं था कि उसने इंटरनेट के माध्यम से हेडी को मारने के लिए किसी को काम पर रखा था। वास्तव में 2000 में जांच के दौरान जासूसों ने सबूतों के लिए स्टीव के कंप्यूटर की जांच तक नहीं की। उस समय सबूतों के लिए कंप्यूटर देखना उतना आम नहीं था। हेडी की हत्या के लिए एलेक्स द्वारा बचाव पक्ष का वैकल्पिक सिद्धांत ये था कि वे ऑनलाइन चैट रूम में मिले थे और मैरीलैंड जाने और एक तरफा प्यार पाने के बाद वो भड़क गया। उन्होंने कहा कि इस अपराध स्थल की तस्वीर के कारण यह अधिक समझ में आता है। बचाव पक्ष ने जूरी से पूछा कि अगर एलेक्स की कहानी सच है कि उसे स्टीव से चाबी मिली थी और जब हेडी घर आई तो उसने उस पर हमला किया था, तो उसका बैग और चाबियां अच्छी तरह से क्यों रखी हुई थी, मेज पर रखा था? स्टीव के वकील ने तर्क दिया कि राज्य के पूरे मामले में सबूत का एकमात्र टुकड़ा खुद हत्यारे एलेक्स बेनेट की गवाही थी। मुकदमे के दौरान कैमरों की अनुमति नहीं थी, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति थी। और जब बचाव पक्ष ने एलेक्स से पूछा कि उसने अपनी शुरुआती कहानी बदलने का फैसला क्यों किया, तो उसने कहा कि अब उसे लगता है कि यह सही काम था।
मैं एक इंसान बनना चाहता था, मैं एक परिवार को कुछ प्रकार की शांति देना चाहता था, मैं पर्याप्त विश्वास रखना चाहता था और एक आदमी के रूप में विकसित होना चाहता था और जो मैंने किया उसके लिए जिम्मेदारी लेना चाहता था।
एलेक्स ने कहानी के अपने पक्ष को समझाना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार जूरी के सामने एलेक्स की गवाही का मुकाबला करने के लिए बचाव पक्ष ने जूरी को बताया कि यह कथन कि स्टीव हेडी की मौत के पीछे का मास्टरमाइंड था केवल मनगढ़ंत था, क्योंकि इसके बिना एलेक्स के पास आजीवन कारावास से बचने का कोई रास्ता नहीं था। राज्य ने तर्क दिया कि स्टीव ने हेडी की हत्या का मकसद लालच था। ये सब हेडी की मृत्यु से ठीक पहले खरीदी गई बीमा पॉलिसियों पर वापस जाता है। जोड़े के पास एक लाल होंडा सिविक थी जिसका स्वामित्व हेडी के पास था। उन्होंने शादी नहीं हुई थी, कोई बच्चा नहीं था, कोई कीमती सामान नहीं था और स्टीव लोवेस में पार्ट टाइम काम करता था। मूल रूप से उनका तर्क था कि सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं था, तो स्टीव को ये बड़ी बीमा पॉलिसी क्यों चाहिए थी जब तक कि यह उसकी जेब भरने के लिए न हो। हालांकि बचाव पक्ष को ये बात हास्यास्पद लगी और स्टीव ने अपनी गवाही के दौरान इसका जिक्र किया। हम एक परिवार शुरू करने जा रहे हैं, हमारे बच्चे होंगे और मैं ये सुनिश्चित करना चाहता था कि अगर मैं मर गया तो हेडी के लिए पर्याप्त पैसे हों। हेदी ने मुझसे पूछा कि क्या ये ठीक होगा अगर उसे $7,00,000 का जीवन बीमा मिल जाए, और मैंने कहा ठीक है। ऐसा लगता है कि हेदी की हत्या से कुछ दिन पहले उसने जीवन बीमा पॉलिसी के लिए कुछ दस्तावेजों पर दबाव डाला था। स्टीव के बचाव पक्ष ने पूछा कि अगर वो वास्तव में छोड़ने की योजना बना रही थी तो उसने ऐसा कुछ क्यों किया।
श्रीमान, सबसे पहले आप कहते रहते हैं कि आप और हेदी शादी करने जा रहे हैं, लेकिन हमने अन्य व्यक्तियों से सुना है कि वो आपको छोड़ने के बारे में सोच रही थी।
मैंने अब तक ऐसा कुछ नहीं सुना है।
अब स्टीव, आपने गवाही में कहा था कि आपने इंटरनेट के जरिए हेदी की हत्या का इंतजाम किया था, क्या आपने ऐसा किया था?
बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हेदी की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं था।
आप गवाही क्यों दे रहे हैं? मैं इसलिए गवाही दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार और दोस्तों और हेदी के परिवार और दोस्तों को सच्चाई पता चले।
दोनों पक्षों ने अपने अपने मामले रखे और डेढ़ दिन की बहस के बाद जूरी ने एक फैसला सुनाया। स्टीवन कुक को हेदी बर्नार्ड ज़िकोस्की की हत्या का दोषी पाया गया। जज ने उसे बिना पैरोल के उम्रकैद की सजा सुनाई, साथ ही ग्रांट लुईस की हत्या के प्रयास के लिए 30 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई। जूरी ने ग्रांट लुईस को हेदी की हत्या का दोषी पाया और उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। एलेक्जेंडर बेनेट की याचिका के कारण उसे उम्रकैद की सजा के बजाय 30 साल की सजा सुनाई गई।